tirada, falta esa tirada.
आप सबकी जय ऑल ग्लोरी टू द टेंपल ऑफ द बॉडी दिस दिस इज नॉट गुड
ज्ञानाथिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलक्य चक्षुर्नतन्मेन तस्मै श्रीगुराव नमः
श्रीचैतन्य मनोविद्धं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवनश्च श्रीरूपं सगरजतं सहागिन रघुनाथन्वितं थं सजीवम् सद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहागिना ललिता श्री विशाखानितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण आदरणीय भक्तजन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ के तरफ से हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। जिस प्रकार ये पंखा बंद कर दे, इसकी आवाज बहुत है। अच्छा ठीक है, आप सबको सुनाई दे रहा है? अच्छा तो पंखा चल, अच्छा ठीक है ठीक है। जिस प्रकार आज इस समय हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी प्रकार इस संस्था के द्वारा सारे विश्व में लोगों के घरों में कार्यक्रम किए जाते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, वह नाश मच्छता वत परश पुरुषीना परापुमान विष्णु अरदते। समाज का विभाजन किया जाता है चार वर्णा में और चार आश्रमों में, पर सबका कर्तव्य ये बनता है
जीव भगवान की उपासना करें, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हों। एक समय अमेरिका में एक बहुत बड़ी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सब ये चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से विश्व की शांति प्राप्त हो सकती है। तो हमारे गुरु महाराज स्वामी प्रभुपाद जी भी उस सभा में गए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा विश्व की शांति प्राप्त हो सकती है अगर हम एक भगवान एक ग्रंथ एक मंत्र को स्वीकार करें। एक भगवान उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण, एक ग्रंथ भगवद गीता और एक मंत्र हरे कृष्ण मंत्र। फिर उन्होंने कहा कि विश्व में शांति प्राप्त हो सकती है। तो वैदिक शास्त्र के आधार पर समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्णों में और चार आश्रमों में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन्हें तो कहा जाता है वर्ण। फिर चार आश्रम हैं ब्रह्मचारी गृहस्था वानप्रस्था सन्यास। ब्राह्मण का कर्तव्य संक्षेप में यह है कि वह अध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाए और लोगों को ये प्रचार करे। ये नहीं कि वो ये सोचे कि इस सेवा के द्वारा वो धन कमाएगा। ये नहीं सोचे कि ये एक प्रकार का व्यापार है। जैसे आजकल तो हमारे ब्राह्मण हैं वो एक प्रकार का व्यापार करते हैं। जो क्षत्रिय हैं उनका ये कर्तव्य संक्षेप में यह है कि वो देश की रक्षा करें, कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करें, युद्ध में लड़ें। वैश्यों का यह कर्तव्य है कि वो खेती की देखभाल करें और व्यापार करें। और शूद्रों का यह कर्तव्य है कि वो ये दूसरे तीन वर्णों की सेवा करें। इसके अलावा चार आश्रम हैं ब्रह्मचारी गृहस्था वानप्रस्था सन्यास। ब्रह्मचारी का यह कर्तव्य है कि वो घर घर जाकर प्रचार करे और गुरु के लिए भीख मांगे। गृहस्थ आश्रम में यह कर्तव्य बनता है कि हम भौतिक जिम्मेदारियों के साथ भगवान के प्रचार में भी दिलचस्पी लें। श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध में बड़ा अच्छा वार्तालाप हमें प्राप्त होता है नारद मुनि और युधिष्ठिर जी के बीच में। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि जी से पूछा, उन्होंने ये कहा कि हम तो गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए हैं, आप हमें ये शिक्षा दो किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर के उत्तर में कहा, क्योंकि श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में नारद मुनि जी पूरी शिक्षा देते हैं वर्णाश्रम के ऊपर। आपने वर्णाश्रम शब्द तो सुना है, तो वर्णाश्रम का अर्थ यह है कि चाहे आप किसी भी वर्ण या आश्रम में क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। तो नारद मुनि जी ने उत्तर में कहा कि संतों की संगत प्राप्त करनी चाहिए। संतों की संगत से भक्ति की प्रेरणा बढ़ती है। जिस प्रकार आप लोग कई सोशल पार्टीज में भी जाते होंगे और कई बार आपके जो मित्र भक्त हैं वो आपको इस प्रकार के कार्यक्रमों में बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि कीर्तन और आध्यात्मिक उपदेश के द्वारा जागृति होती है इस विषय पर कि हम ये खोज करें कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि शुद्ध संतों की संगत प्राप्त करो। जैसे कि श्रीमद् भागवत में देखा जाता है कि देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव भगवान से पूछा, मैं किस प्रकार से कि जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे ये शिक्षा दो। कपिल देव जी ने कहा कि भक्ति के द्वारा। उन्होंने पूछा ये भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। कपिल देव भगवान ने कहा संतों की संगत से। फिर माता ने पूछा, पर हम संतों को कैसे पहचाने, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि हमारा मार्ग असली मार्ग है, आप कैसे पहचानोगे कौन असली है कौन नकली है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कपिलदेव जी ने संतों के लक्षणों का वर्णन किया। क्या कहा? तितिक्षवा करुणी कहा सूदा सर्व दहीनम अजित शत्रु शांत साधवा साधु भूषण। ये हैं संक्षेप में साधुओं के लक्षण। तितिक्षवा, बिल्कुल सहनशील होना चाहिए। करुणी कहा, दया की भावना, दयालुता, दया की भावना होनी चाहिए और उनका कोई शत्रु नहीं है, शांत रहते हैं, शास्त्र के आधार पर चलते हैं। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, धर्मम जो साक्षात भगवत परिताम। तो जो शुद्ध संत हैं वो केवल शास्त्र के आधार पर ही प्रचार करते हैं। जैसे कि आपने अगर भगवत दर्शन पत्रिका हमारी पढ़ी है या भक्ति विनोद स्वामी प्रभुपाद जी के किसी भी प्रवचन को आप सुनो, आप देखोगे कि वो केवल शास्त्र के आधार पर ही प्रचार करते हैं। तो संत का ये कर्तव्य है कि केवल वो शास्त्र के आधार पर ही प्रचार करे। हमारे में ये समझ रहती है कि गृहस्थ आश्रम में हमें छूट है भक्ति से, और हम ये सोचते हैं कि इस आश्रम में रहते हुए भक्ति की आवश्यकता नहीं है, केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी का ही कर्तव्य बनता है और गृहस्थ का नहीं। और ये बहुत भारी भूल है। चाहे हम किसी भी वर्ण या आश्रम में क्यों ना हो, हमें भगवान को केंद्र बिंदु बनाना है। जैसे कि परीक्षित महाराज जी को एक ब्राह्मण लड़की ने श्राप दिया, क्या कि 7 दिन के पश्चात आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज जी ने जब ये सुना तो नामशरण्य के वन में जाकर वहां उन्होंने सब ऋषि मुनियों से एक प्रश्न पूछा, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी के राजा थे। उनके कहने पर सारे महान ऋषि मुनि वहां पहुंच गए। सबसे उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, क्या जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। उनका तो ये भाग्य था कि उन्हें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आएगा। पर अगर ध्यान से देखा जाए, आपको और हमें 7 सेकंड की भी सूचना शायद नहीं मिले। तो सुखदेव गोस्वामी जी, व्यास देव जी के पुत्र भी उस सभा में उपस्थित थे और उन्होंने ये उपदेश दिया कि आपको कृष्णा के संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो हम सबको ये पूछना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा था। तो नारद मुनि जी ने कहा, साधुओं की संगत के द्वारा, साथ में कहा श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के अध्ययन भी के साथ में। भगवान की वाणी है वैदिक शास्त्र, और वैदिक शास्त्र के द्वारा हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज अफसोस की बात यह है कि शास्त्र को पढ़ने में हम दिलचस्पी ही नहीं लेते, और जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे हम भगवान के उपदेश को कैसे समझेंगे। तो भगवत गीता में भगवान का उपदेश है। भगवत गीता के द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है किस प्रकार से हम जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। गीता में स्पष्ट रूप से भगवान बोलते हैं, दुखालयम शाश्वतम। भौतिक संसार में दुख है, कष्ट है, और हर चीज जो है साथ में वो अस्थाई है। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, कष्टों से कोई छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक रूपों से हमें कष्ट भुगतना पड़ता है। जैसे आज हमें कईयों ने कहा, अभी तक दिल्ली में बारिश नहीं आई, ये एक प्रकार का कष्ट है। सात प्रकार के कष्ट हर एक को भोगने पड़ते हैं। एक है प्रकृति के द्वारा जो कष्ट आता है, कभी अकाल हो जाता है, सूखा हो जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, यह है एक प्रकार का कष्ट। दूसरे प्रकार का कष्ट है आपका मन आपको सताता है, मन सताता है, मन में अनेक विचार आते हैं, जब उन विचारों को हम सफल नहीं बना सकते तो मन सताता है। जब आपके प्रिय मित्र का किसी का देहांत हो जाता है तो मन आपको सताता है और दूसरे व्यक्ति सताते हैं, खत्म मच्छर वो भी सताते हैं आपको, मच्छर भी आपको ये कहता है कि वो आपको नहीं बैठने देगा शांति से। इसके अलावा चारों प्रकार के कष्ट, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, तो देखा जाए तो भौतिक संसार में केवल कष्ट ही कष्ट है। इस कारण संस्कृत में ये भौतिक जगत को कुंठा लोक कहा जाता है। कुंठा लोक मतलब कि जहाँ कष्ट ही कष्ट है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी प्रकार से हम अमेरिका में चले जाएं रहने के लिए तो वहाँ कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा, वहाँ भी वैसे ही कष्ट है। पिछले महीने हम टोरंटो में थे तो हम हमारे एक मित्र को हम देखने गए थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ हमने देखा अनेक प्रकार के बीमार व्यक्ति। एक व्यक्ति 14 साल से बेहोश पड़ा है, 14 साल से उसके बाजू के कमरे में ही। एक व्यक्ति 3 साल से बेहोश पड़ा है हॉस्पिटल में। तो देखा जाए तो सारे विश्व में कष्ट है। तो अगर हम ये सोचें कि किसी प्रकार से हमें योजना बना सकते हैं कि हम कष्टों से बच जाएंगे तो ये बहुत भारी भूल है। इस कारण प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, सुचेत तो विरोक चेत स इंद्रिय तो माया सकाय भ्रम उद्वतो विमूढ़। प्रहलाद महाराज जी का कहना है कि भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा अपने दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये देखकर वैष्णव भक्तों को अत्यंत दुख होता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भौतिक संसार में सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जैसे कि हम अपने जब दांत गिरने लगते हैं तो नकली दांत लगा देते हैं, जब बूढ़े होने लगते हैं तो मेकअप करते हैं बुढ़ापे पन को छुपाने के लिए, जब बाल सफेद होने लगते हैं तो बालों को भी रंग करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि हम कष्टों को छुपा सकें, पर आप ज्यादा देर तो छुपा नहीं सकते। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि समय का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समझो अगर व्यक्ति 100 साल भी जी ले, आधा जीवन तो बीत जाता है लगभग सोने में, पहले 20 साल तो बीत जाते हैं खेलने कूदने में और अंत के 20 साल बीत जाते हैं किसमें, इसी चिंता में अंत कब आएगा। बूढ़े व्यक्तियों को यही चिंता रहती है कि अंत कब आएगा, तो कहाँ बच्चा ज्यादा से ज्यादा 10 साल बचे। तो इसलिए वो कहते हैं अभी से शुरू करो, छोटी सी आयु से 5 साल की आयु से ये आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आरम्भ कर देना चाहिए। तो आज समाज में ये बहुत भारी कमी है कि इस पर बल नहीं दिया जा रहा, इस आध्यात्मिक ज्ञान पर, इस आध्यात्मिक संदेश पर। इसी कारण जो भगवान के भक्त हैं वो हर अवसर का लाभ उठाते हैं भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनके हृदय में ये विश्वास है कि इस संदेश के अलावा और कोई उपाय नहीं है समाज के लिए। जब हम बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं जैसे बॉम्बे में हुआ या वृंदावन में, तो कई बार लोग हमें कहते हैं कि आप लोग मंदिर क्यों बना रहे हो, यही पैसा लगाओ गरीबों को अन्न बांटने पे, मंदिर क्यों बना रहे हो, मंदिरों की क्या आवश्यकता है। हमारा ये उत्तर है कि शास्त्र की दृष्टि से वो व्यक्ति धनी कहलाता है जो कि परम भगवान को स्वीकार करता है, और वो गरीब कहलाता है जो कि भगवान के संदेश का विरोध करता है। तो अगर देखा जाए लगभग सभी आज समाज में गरीब हैं और मंदिर में वैसा वातावरण होना चाहिए जहाँ जाकर व्यक्ति की प्रेरणा भगवान के संबंध में बढ़े। इस कारण मंदिरों में कीर्तन होना चाहिए, इस कारण मंदिरों में ये आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त होना चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सके। तो शास्त्र में कहा जाता है ये मंदिर जो है ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल है और यहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो शास्त्र में बार बार इस बात पर बल दिया जाता है कि हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। ब्रह्म भूत प्रतनात्मन सोच दीन कंसते, हर व्यक्ति खुशी चाहता है और ये खुशी केवल आध्यात्मिक कार्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसी कारण प्रहलाद महाराज जी कहते हैं नरोति विदुम स्वर्त कथिन है विष्णु, उनका ये कहना है कि आज हम ये नहीं जानते कि किस मार्ग के द्वारा खुशी की प्राप्ति हो सकती है। भौतिकवादी व्यक्ति ये सोचते हैं कि अधिक परिश्रम के द्वारा खुशी की प्राप्ति होगी, पर आध्यात्मिकवादी व्यक्ति ये जानता है कि जब तक हम भगवान को केंद्र बिंदु नहीं बनाएं, जब तक हम उनके शरणागत नहीं हों, जब तक असली खुशी की प्राप्ति नहीं हो सकती। रूप गोस्वामी जी एक महान संत थे, असल में वो एक राजा के पास प्रधानमंत्री के समान कार्य कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी को प्रयाग अलाहाबाद में उन्हें मिले, वहाँ उनका परिचय हुआ। उनके परिचय होने के बाद वो उनके भाई सनातन गोस्वामी जी ने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु जी के साथ वो रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें ये उपदेश दिया कि तुम भक्ति के संबंधित ज्ञान लिखो, तो उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भौतिक खुशी जो है वो तो किसी समय भी समाप्त हो सकती है। आप सब जानते हो इतने करोड़पति व्यक्ति थे, उनका देहांत बिना एकदम ही हो गया। जैसे आपके हमारे देश में भी संजय गांधी था, एक समय बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था पर एक मिनट में जीवन समाप्त हो गया। तो भौतिक खुशी तो किसी समय भी समाप्त हो सकती है, पर आध्यात्मिक खुशी जो है वो केवल बढ़ते जाती है। तो ये नहीं कि हम असाधारण कार्य के साथ भक्ति को भी नहीं निभा सकते। कई बार लोगों का यह सोचना है कि अगर हम भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे तो हमें समाज को त्यागना पड़ेगा, हमें कार्य धंधा वगैरह छोड़ना पड़ेगा, तो ये गलत विचार है। जैसे कि हम भगवद गीता में देखते हैं कि अर्जुन युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे, पर भगवान ने उन्हें कहा कि लड़ो। तस्मात सर्वेश कलेश मम मनस्मारा युद्ध चा, पर मेरे लिए लड़ो हार और जीत का सोचे बिना। तो उसी प्रकार हर स्थिति में हम भक्ति के आधार पर जीवन का उपयोग कर सकते हैं। जो ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं वो भी इस संदेश का लाभ उठा सकते हैं और जो गृहस्थ आश्रम हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। भगवान को केंद्र बिंदु बनाना कठिन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी परम भगवान के अवतार हैं, वो दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे थे। तो एक समय एक ब्राह्मण गृहस्थ व्यक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ा, उनका नाम था कुर्मा। तो कुर्मा ने कहा मैं घर में नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ यात्रा करना चाहता हूँ। पर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, घर में जाओ और कृष्णा का कीर्तन करो। तो कहने का अर्थ यह है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आज हम देख रहे हैं सारे विश्व में कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रचार के द्वारा हजारों गृहस्थ फैमिली सारे विश्व में साधारण कार्य के साथ भक्ति को भी स्वीकार कर रहे हैं और इस प्रकार जीवन को सफल बना रहे हैं। भक्ति आरंभ होती है जीव के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम लो और भगवान का नाम सुनो। भगवान का कीर्तन तो हर व्यक्ति कर सकता है और इसके साथ शास्त्र का अध्ययन, ये तो कठिन नहीं है। ये शास्त्र का अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, अध्यात्मिक ज्ञान के साथ आप अध्यात्मिक ज्ञान की सहायता से आप भौतिक विचारों का विरोध कर सकते हो। शुद्ध शांति प्राप्त हो सकती है केवल इस भक्ति के द्वारा। आज हम ये सोचते हैं कि भौतिक सफलता प्राप्त करके शांति की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज की बड़ी सुंदर कथा है। आप जानते होंगे कि ध्रुव महाराज जी का अपमान किया था उनकी सौतेली माँ ने, जब उन्होंने ध्रुव महाराज को पिता की गोद में बैठने से रोक दिया था। ध्रुव महाराज में क्षत्रिय खून था और उन्हें ये पता लगा कि उनकी सहायता केवल भगवान ही कर सकते हैं। ध्रुव महाराज ने अपनी माता से कहा, कौन मेरी मदद कर सकता है, पूछा। माता ने कहा, मैं तो नहीं मदद कर सकती, पर सुनने में आता है कि भगवान तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और फिर वो जंगल में गए, अधिक तपस्या उठाई उन्होंने, साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की रचना की। और जब उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ 6 महीने की तपस्या की समाप्ति पर, उन्हें इतना अधिक आनंद अनुभव हुआ कि जो उनकी भावना थी वो सब को भूल गए। उनकी क्या भावना थी, किस विचार से वो गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए कि एक बड़ा महान राज्य प्राप्त हो, क्योंकि उनके पिता ने, उनकी सौतेली माँ ने उन्हें उनके पिता की गोद में बैठने से रोक दिया था। तो उनकी ये भावना थी कि तपस्या के द्वारा एक इतना महान राज्य प्राप्त हो कि उनके पिता को भी सबक मिले। पर भक्ति के द्वारा उन्हें इतना आनंद प्राप्त हुआ कि उन्होंने भगवान को कहा, मैं तो टूटी हुई शीशों को ढूंढ रहा था,